ओम शांति। पल पल परमात्मा की याद जिनके दिल में समाई रहती है, जिनके चेहरे पर सदा रूहानी मस्ती रहती है, दीदी आप तो हमेशा बाप के समीप रहती हैं, ऐसी आदरणीय विमला दीदी जी का हम करतल ध्वनि के साथ स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। इंदौर जोन की आप वरिष्ठ दीदियों में से एक है, ज्ञान योग में आपकी हमेशा से ही रुचि रही है, आपके जीवन के नियम मर्यादाएं और धारणाएं हमेशा औरों को प्रेरणा देते हैं, सेवा में नित नए आयाम आप गढ़ती हैं, जोन के अनेक स्थानों पर योग तपस्या भट्टी कराकर अनेकों के जीवन को अलौकिकता और रूहानियत से भर देती हैं। इंदौर जोन में जो टीचर्स ट्रेनिंग होती है, उस टीचर्स ट्रेनिंग में आपकी विशेष भूमिका होती है। 50 वर्षों से भी अधिक समय से आपने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित कर अनेक आत्माओं को आप समान बनाया है। मीडिया विंग ब्रह्मा कुमारी की जो मीडिया विंग है उसके आप जोनल कोऑर्डिनेटर है। वर्तमान समय में आप जबलपुर कटंगा कॉलोनी में अपनी सेवाएं दे रही है और आज के आपका क्लास का विषय सबको विदित है कि समय अनुसार समीपता और समय की समीपता अनुसार हमारे जीवन में परिवर्तन क्या आना चाहिए। समय तो भाग रहा है लेकिन हमारा परिवर्तन कहाँ जा रहा है और कैसा परिवर्तन होना चाहिए, इस पर आदरणीय दीदी जी आप सबको बहुत सहज और सुंदर ज्ञान की गहराई में ले जाएंगी आदरणीय विमला दीदी जी।
ओम शांति, ओम शांति। हमारा जीवन समय से बना हुआ है, समय ने हमारे जीवन को तैयार किया है। तो बाबा की समय समय पर चलने वाली वाणियों में हमें ये शिक्षा और चेतावनी मिलती रही है कि बच्चे समय कम है और पुरुषार्थ तुम्हें तेज करना है। समय की समीपता को देखते हुए अब पुरुषार्थ में तेजी आ जानी चाहिए। हमारा जीवन जिसमें हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, हमारा इस पुरुषार्थी जीवन के तीन पहलू हैं, ज्ञान, ध्यान और सावधान। सारा पुरुषार्थ तीन पहलू पर ही आधारित होता है। आज तक किसी ने ये ज्ञान नहीं दिया कि जिनके तुम पूजा करते हो, जिन देवी देवताओं की तुम पूजा करते हो, वैसा तुम बन भी सकते हो। किसी ने ज्ञान दिया आज तक? भक्ति में किसी ने कहा कि तुम भी लक्ष्मी और नारायण जैसा बन सकते हो? क्योंकि सच तो ये है कि ऐसा देवी देवता जैसा बनने का ज्ञान एक हमारे मीठे शिव बाबा के सिवाय किसी के पास है ही नहीं। बाबा का ज्ञान ही हमें इतना श्रेष्ठ बना सकता है और बना रहा है। साथ साथ में बाबा की अनेक वाणियों में ये भी हमें शिक्षा मिलती है, वाणियों में ये भी बाबा ने स्पष्ट कर दिया है कि आगे चलकर परिस्थितियां कैसी आने वाली है, कैसी कैसी परिस्थितियां आएगी और उन परिस्थितियों के अनुसार अभी से तुम्हें क्या तैयारी करनी है। क्योंकि तैयारी तो हमेशा समय के पूर्व ही की जाती है। अगर प्यास पानी पीना है तो ऐसे नहीं कि जब प्यास लगेगी तो कुआं खोदने बैठेंगे, हमें पहले से ही कुआं तैयार करना होगा। इसी प्रकार से अंतिम समय की वो सब परिस्थितियां जो हमारे सामने आने वाली है, उन सब का सामना करने के लिए हमें अभी से ही अपने आप को तैयार करना है। बाबा ने हमें अनेक युक्तियां बताई है तैयारी के लिए और उन सब तैयारियों का लक्ष्य यही है कि हमारी स्थिति अभी से ही अव्यक्त बन जाए, योग युक्त बन जाए, युक्ति युक्त बन जाए और फरिश्ता बन जाए, ताकि वो सब परिस्थितियों का हम आसानी से सामना कर सकेंगे। अंतिम समय की तैयारी के लिए हमारी मम्मा ने भी एक बहुत अच्छी बात हम सभी को बताई है। एक छोटा सा स्लोगन मम्मा का बहुत ही हमको प्रेरणा देने वाला है कि जीवन की हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर चलो। जीवन की हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर चलो। याद है ना सभी को मम्मा का ये छोटा सा स्लोगन। पता नहीं दूसरी घड़ी हमें मिले ना मिले पुरुषार्थ करने के लिए, कुछ करने के लिए, हर घड़ी हमारे लिए अंतिम ही हो तो तैयारी भी वैसी ही हो। मुझे आज कुछ अच्छा करने का संकल्प आ रहा है तो अभी इसी घड़ी कब ले, आगे आने वाली घड़ी का भी कोई भरोसा नहीं। एक बार एक व्यक्ति एक संत के पास गया और संत को कहा, मैं बहुत बुरा व्यक्ति हूं, मैं बहुत बुरा आदमी हूं, मैंने जीवन में बहुत पाप कर्म किए हैं, बहुत अपराध किए हैं और अपने आप को मैंने सुधारने की कोशिश भी बहुत की है, लेकिन मैं सफल नहीं हो सका, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। आपके पास कोई ऐसी युक्ति हो, ऐसा कोई तरीका हो जो मेरा सुधार कर दे। संत ने उसकी बात ध्यान से सुनी और थोड़ी देर मौन रहने के बाद उन्हें कहा, तुम यहां से चले जाओ। व्यक्ति को बड़ा आश्चर्य लगा कि मैं तो यहां संत से विधि पूछने आया हूं और संत कह रहे कि यहां से चले जाओ। उस व्यक्ति ने पूछा, तो मैं जाके फिर करूं क्या? आपने कहा चले जाओ, मैं चला जाता हूं पर करूंगा क्या मैं? बोले खाओ पियो मौज करो। उसको आश्चर्य लगा, संत से कहा मैं तो ये कर ही रहा था अभी तक। तब संत ने कहा, तुम्हारे जीवन की आयु सिर्फ 8 दिन बाकी रही है, सिर्फ 8 दिन, ये जाओ खाओ पियो मौज करो। व्यक्ति चला गया, चिंता लग गई, चिंता लगे एक एक दिन गिनने लगा और उसने सोचा ये 8 दिन मुझे मिले हैं, अब ये 8 दिन तो कम से कम मैं जीवन के अच्छे गुजारूं। अब उसने जाते ही भगवान का ध्यान करना, पूजा करना, मंदिरों में दर्शन करना, हर मंदिर में जाके भगवान से माफी मांगना अपने किए हुए की, जिन जिन के साथ बुरा किया उनके पास जाकर उनसे क्षमा मांगी, उसने गरीबों की सेवा करी, जितना उसे दान पुण्य बहुत किया जितना उससे अच्छे से अच्छा कर्म हो सकता था उसने ये 8 दिन किया और करता रहा। एक दिन गिनता रहा, एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरा, 8वां दिन भी आ गया और 8वां दिन भी पूरा निकल गया, 9वां दिन शुरू हो गया, उसकी मृत्यु तो हुई नहीं। आश्चर्य लगा कि संत ने ऐसा झूठ क्यों बोला, मेरा आज 9वां दिन शुरू हो गया, मैं तो जिंदा हूं अभी भी। वो गया संत के पास कि आपने तो कहा 8 दिन ही तुम्हारे जीवन की आयु बची है। संत ने कहा पहले मुझे ये बताओ कि 8 दिन तुमने किया क्या क्या। तब उसने गिनाए सब अच्छे कर्म। बोले देखो, जब तुम्हें ये पता चला कि तुम्हारे जीवन के सिर्फ 8 दिन बाकी हैं, तो तुमने अपने जीवन का एक एक सेकंड, एक एक क्षण सफल किया ना, अच्छे कर्म में सफल किया ना। ऐसे ही जीवन में कोई सा भी अंतिम क्षण हमारा आ सकता है, जीवन में अंतिम घड़ी कोई भी कभी भी कहीं पर भी आ सकती है, उसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए तुम हमेशा ही अच्छे कर्म करते रहो, यही मेरी शिक्षा है। तो कहने का भाव यही कि मम्मा की जो शिक्षा थी कि हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर हम चलेंगे तो हमारा पुरुषार्थ बहुत तेज होगा, और जैसा हमें अंतिम समय की तैयारी करनी है बाबा के इशारे प्रमाण, वैसे हम अपनी तैयारी में जुट जाएंगे। इसके साथ साथ जो हमें आगे बढ़ने में तीव्र पुरुषार्थ करना, माने आगे आगे तेजी से बढ़ना, तीव्र पुरुषार्थ का मतलब तो यही हो ना, जहां हम हैं इतने वर्षों से जहां हम हैं वहीं खड़े रहना नहीं, ये चेक करना कि हम आगे आगे बढ़ रहे हैं, मेरी बुराइयां कम होती जा रही है, मेरे संस्कारों में पॉजिटिव चेंज आता जा रहा है क्या, जो मेरी कमी कमजोरी मुझे भी लगती थी दूसरों को भी महसूस होती थी, वो मेरी कमी कमजोरियां खत्म होती जा रही है क्या। ऐसे आगे बढ़, इसको कहते आगे बढ़ना। तो तीव्र पुरुषार्थ से हम आगे बढ़ते रहें, लेकिन ऐसा पुरुषार्थ करने में जो बंधन होते हैं, कई प्रकार के बंधन, वो रुकावट बन जाते हैं, वो हमको आगे नहीं बढ़ने देते हैं। जैसे खूंटे से बंधी हुई गाय जितनी लंबी रस्सी है वहां तक ही जाएगी, उसके आगे नहीं बढ़ सकेगी। पिंजरे का पंछी वो अंदर ही अंदर घूमता रहेगा, बाहर उड़ नहीं सकेगा, ऊंचाई तक नहीं जा सकेगा। इसी प्रकार से हमारे जीवन में यदि कोई भी बंधन है, और हर व्यक्ति, हर पुरुषार्थी ये अच्छी तरह से जानता है कि उसका बंधन क्या है, कौन सी बातें उसे आगे बढ़ने के लिए, पुरुषार्थ को तीव्र बनाने के लिए रोक रही है, रुकावट बनी हुई है। हर एक जानता है कि उन बंधनों को जानकर, चाहे वो हमारे स्वभाव का बंधन हो, चाहे वो हमारे संस्कारों का बंधन हो, चाहे हमारी कुछ पुरानी आदतों का बंधन हो, देह के संबंध, देह के पदार्थों का बंधन हो, कोई सा भी बंधन हो, बंधन हमें आगे बढ़ने नहीं दे सकता है। इसलिए चेक करना है, आत्मनिरीक्षण करना है कि कौन सी बात मुझे आगे बढ़ने से रोक रही है। मुख्य उसमें अगर देह का बंधन है तो हम आत्म अभिमानी बनने के अभ्यास को बढ़ाएं, देह भान, देह अभिमान, देहिक दृष्टि, देहिक वस्तुओं के प्रति आकर्षण, कुछ भी हो अगर ये है तो हम अपने को आत्म अभिमानी ज्यादा से ज्यादा बनाने का पुरुषार्थ करें, कोशिश करें, जैसे कि हमारे बाबा ने किया। सभी को मालूम है ना बाबा ने कितना पुरुषार्थ किया था, जब संदेश मिला था आपको ऐसा फरिश्ता ब्रह्मा बनना है, उसी दिन से ब्रह्मा बाबा ने अपना आत्म अभिमानी बनने के पुरुषार्थ को बहुत तीव्र कर दिया, सब डारियां भर ली, मैं आत्मा, ये आत्मा, वो आत्मा। तो ऐसा ही हम दृढ़ता से अभ्यास करें दिन भर, सुबह से लेकर रात तक, अपने में देखें कि कितना समय मैं अपने आप को आत्मा समझ कर रही, आत्मा समझ कर औरों को देखा, आत्मा समझ कर ये सब आत्मा मेरे भाई हैं वैसा मैंने व्यवहार किया, ये सब परमात्मा की संतान है ये समझकर मैंने व्यवहार किया, ये अपने अंदर देखना है। ऐसा अभ्यास बढ़ाते बढ़ाते हम आत्म अभिमानी बन जाएंगे। इसके साथ ये जो संगम युग हमें मिला है, ये जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने का युग है। केवल ये छोटा सा एक युग, पूरे कल्प में जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने का युग होता है। और जीवन मुक्त स्थिति अर्थात जिस स्थिति में अतीन्द्रिय सुख समाया हुआ है, तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए जो हमारा ही गायन है, हम संगम युगी गोप गोपियों का गायन है, ये अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने में सबसे बड़ा बंधन कौन सा है, सबसे बड़ी रुकावट कौन सी है? मैं और मेरा, मैंपन और मेरापन, ये सबसे बड़ी रुकावट है। और मैं और मेरेपन का बंधन जब तक कटेगा नहीं, टूटेगा नहीं, छूटेगा नहीं, तब तक आप स्वर्ग के वर्षे के अधिकारी भी नहीं बन सकेंगे। एक बार एक व्यक्ति की डेथ हुई, मृत्यु हो गई, वो व्यक्ति स्वर्ग के द्वार पे पहुंच गया, स्वर्ग के द्वार पे पहुंचा, स्वर्ग के अंदर जाने के लिए देवदूत ने उसको रोक दिया। स्वर्ग तक तो पहुंच गया, पर स्वर्ग के अंदर जाने के लिए जो देवदूत वहां खड़े थे उसने उनको रोक दिया, बोले आप अंदर नहीं जा सकते हैं। व्यक्ति को आश्चर्य हुआ, मैंने जीवन भर पुण्य कर्म किया, मैं जीवन भर सदाचारी रहा, एक से एक अच्छी सेवा का कार्य किया, मुझे तो पूरा अधिकार है स्वर्ग में जाने का, और ये देवदूत मुझे स्वर्ग में जाने के लिए रोक रहे हैं। उन्होंने पूछा, भाई मुझे आप क्यों रोक रहे हैं? तो जीवन भर सदाचारी रहा हूँ, एक से एक अच्छी मैंने सेवा का कार्य किया है, कभी किसी को कोई तकलीफ नहीं दी है, मेरा तो अधिकार बनता है। देवदूत ने कहा, आपकी बात सही है, लेकिन हमारे यहाँ का भी कुछ हिसाब किताब है, हमारे यहाँ के भी कुछ नियम है, उस नियम के अनुसार ही हमें आपका हिसाब किताब देखना पड़ेगा, आपके श्रेष्ठ कर्मों का हिसाब किताब। बोले ठीक है, मैं बताता हूँ मैंने कौन कौन से श्रेष्ठ कर्म किए। सबसे पहले देखो, मैं पूरे जीवन भर अपने परिवार के प्रति बहुत वफादार रहा, मैंने अपने परिवार का, परिवार के सभी सदस्यों का बहुत ध्यान रखा, उनको कोई चीज की कभी कमी नहीं होने दी, हर प्रकार के मैंने सुख के साधन उनको दिए, परिवार पूरा मेरे से संतुष्ट रहा और मैंने उनका अच्छी तरह से ध्यान रखा, जो एक हर व्यक्ति का फर्ज होता है, मैंने परिवार के प्रति अपना फर्ज बहुत निष्ठा से, ईमानदारी से निभाया, ये श्रेष्ठ कर्म किया मैंने। उन्होंने कहा, ठीक है आपको एक नंबर मिलता है। हाँ, देवदूत ने पहले बता दिया था कि हम आपके नंबर की गिनती करेंगे, आपके कर्म के अनुसार आपको यहाँ के हिसाब किताब से नंबर दिए जाएंगे, स्वर्ग का जो नियम है उस नियम से ही आपको नंबर दिए जाएंगे। तो उन्होंने कहा, आपको स्वर्ग के अंदर प्रवेश होने के लिए 1000 नंबर चाहिए। कितना नंबर चाहिए? 1000 नंबर। जब उसने परिवार की सारी बात बताई कि परिवार की मैंने इतनी सेवा करी, परिवार के लिए मैंने ये किया, मेरे परिवार के लिए मैंने ये किया, मेरे परिवार के लिए मैंने ये किया, बच्चों के लिए ये किया, पत्नी के लिए, सबका बताया, देवदूत ने उसको सिर्फ एक नंबर दिया। कितना नंबर दिया? एक नंबर। अरे बड़ा आश्चर्य लगा, जीवन भर मैंने परिवार को समर्पित कर दिया और सिर्फ एक ही नंबर मिले। थोड़ा धक्का तो लगा उसे, उसने कहा चलो कोई बात नहीं और आगे के भी मैं सुनाता हूँ। आगे उसने फिर सुनाया कि मैं सरकार के प्रति बड़ा ईमानदार हूँ, मैंने ईमानदारी से वोटिंग करी, हमेशा जो वोटिंग होती है मैंने हमेशा ईमानदारी से वोटिंग करी है, कभी मैंने उसको छोड़ा नहीं है। मैंने ईमानदारी से इनकम टैक्स चुकाया है, कभी इनकम टैक्स की मैंने चोरी नहीं की। मैं समाज की सेवा में हमेशा लगा रहा, मैं बहुत बड़ा समाज सेवी माना जाता रहा हूं, तो मैंने बहुत समाज की सेवा करी। जितनी समाज के द्वारा सेवा होती है तो समाज संस्थाओं से मैं जुड़ा रहा, वो सामाजिक संस्था ने मुझे जो जो सेवा दी सारी सेवाएं मैंने की। ठीक है, देवदूत ने उसको दो नंबर दे दिया, अब हो गए केवल तीन नंबर। अरे इतनी सारी मैंने सेवाएं की, सिर्फ तीन ही नंबर मिले, कोई बात नहीं, थोड़ी सी सेवाएं मेरी और बाकी रही है, वो भी सुना देता हूँ। फिर उसने आगे बताया कि देखो जहां मैं रहता था वो पूरी एरिया में मैं हमेशा सबकी मदद करने के लिए तैयार रहता था। मेरे पास जो जिस प्रकार की भी मदद मांगने आते थे, सेवा लेने आते थे, मैं हमेशा उनकी मदद करता, किसी को मैंने खाली लौटाया नहीं। गरीब आते थे, जिस प्रकार की मदद मुझसे मांगते थे मैं उनकी मदद करता था। कोई बीमार हो जाता उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाना मैं अपना कर्तव्य समझता था। इस प्रकार से मैंने हमेशा मेरे परिवार के ही नहीं, मैंने हमारे आसपास के जितने भी मुझसे मदद लेने आते मैं सबकी सेवा करता था, कभी मैंने सेवा के लिए किसी को ना नहीं कहा। ठीक है, देवदूत ने उसको तीन नंबर दे दिए तो टोटल हो गए छह नंबर, उसे तो चाहिए 1000 नंबर। बड़ा दुखी हो गया, छह ही नंबर, पूरा जीवन मैंने अच्छे अच्छे कर्म किए और देवदूत मुझे स्वर्ग में जाने के लिए सिर्फ छह ही नंबर दे रहे हैं। बड़ा उस दुखी और बड़ा हताश और निराश होकर वैसा सिर पकड़ के जमीन में बैठ गया और जमीन में बैठकर भगवान के ऐसी प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु अब एक तेरा ही सहारा है, एक तू ही मेरा सब कुछ है, मेरा सब कुछ तेरा है, मेरा कुछ भी नहीं है प्रभु, मैं भी तेरा हूं, मेरा सब कुछ तेरा है। जैसे ही उसने ये कहा मैं भी तेरा मेरा सब कुछ तेरा, देवदूत ने उसको उठाया और उठा के कहा तुम्हारे 1000 नंबर पूरे हो गए, अब स्वर्ग में जा सकते हैं, अब स्वर्ग में आप जा सकते हैं। क्या प्रेरणा मिली, स्वर्ग में जाने के लिए सतयुग का वर्षा लेने के लिए ये जो हमने कर्तव्यों का पालन किया है, परिवार के प्रति आपकी जो कर्तव्य आपका हिसाब किताब है, तो बाबा कहते ही हैं इन सबके साथ हमारा हिसाब किताब, ये परिवार जुड़ा है हमसे, इसका कोई कनेक्शन नहीं है सतयुग में जाने के लिए, स्वर्ग का वर्षा पाने का इनसे कोई कनेक्शन नहीं है। आपने जो जो किया है ठीक है, उसके 6 नंबर मिल गए, तो स्वर्ग में जाने के लिए उसका कोई कनेक्शन नहीं। स्वर्ग में जाने के लिए ये शर्त मैं और मेरा सब कुछ उसका, मैं मेरे का जो ये बंधन है ना, ये जो हम मैं मेरा मेरा इसमें फंसे रहते हैं, ये जंजीरों में जकड़े रहते हैं, यही सबसे बड़ा बंधन है हमें आगे बढ़ाने के लिए अंतिम समय की तैयारी का। इसलिए सबसे बड़े से बड़ा बंधन जो हमें आगे नहीं बढ़ने देता है, तीव्र पुरुषार्थ ही नहीं बनने देता है, स्वर्ग के वर्षे से ऊंच पद पाने के से वंचित करता है, वो है मैं और मेरे का बंधन। तो चेक करना है मेरे अंदर ये कहीं भी मैं और मेरापन कहीं कोई अंश रूप में तो बाकी नहीं है, अगर है ठीक है, आज से हम उसको निकालना शुरू कर, खत्म करना शुरू करें। इसके अलावा कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान, कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान भी हमें अंतिम समय की तैयारी में बहुत मदद करता है। कईयों की शिकायत रहती है, कईयों के संकल्प रहते हैं हम जीवन में अच्छा कर रहे हैं, मैंने अच्छे से अच्छा ही सब किया है, किसी का बुरा नहीं किया, किसी को परेशान नहीं किया, किसी के लिए हम समस्या नहीं बने, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई, फिर भी मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया, पर सब मेरे साथ बुरा क्यों करते हैं? मैं अच्छे से अच्छे कर्म कर रहा हूं, हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान रखता हूं या रखती हूं, फिर भी बाबा मेरी मदद क्यों नहीं करते हैं? एक के बाद एक समस्या मेरे सामने आती जाती है और मैंने जीवन में अच्छे से अच्छा कर्म किया और ध्यान रखता हूं कि अच्छे से अच्छा होता रहे। अब तो ज्ञान मिल गया है तो और ध्यान रखते हैं कि कोई कर्म मेरे से ऐसा विकर्म न बन जाए, मेरा कर्म किसी के दिल को दुखाने वाला न बन जाए, ध्यान रखते हैं। तो यहां पर ऐसा सोच सोच के कभी कभी थोड़ी सी निराशा आ जाती हमें अपने अंदर, लेकिन हमेशा ये विश्वास रखना चाहिए हम जो भी अच्छा कर रहे हैं, हम जो भी अच्छे से अच्छा कर रहे हैं, और आपको भी विश्वास है कि मैंने अच्छा किया, वो कहीं व्यर्थ नहीं गया है। उसका फल आपको आज नहीं मिल रहा है, वो जमा हो रहा है, वो जमा होता जा रहा है, इकट्ठा होकर इकट्ठा फल आपके सामने आएगा, बड़ा फल बन के आएगा सामने। बस आपको रखनी है धैर्यता, आपको धैर्यता रखनी है, विश्वास रखना है, मेरा किया हुआ कहीं व्यर्थ नहीं जा रहा है, सब जमा हो रहा है। वो हथौड़े की बात है ना, कि हथौड़े ने पहले हथौड़े की मार ने पत्थर नहीं तोड़ा और आखिरी वाले दसवें वाले हथौड़े की मार ने पत्थर को तोड़ दिया, तो श्रेय किसको दिया? दसवें वाले हथौड़े को। लेकिन नहीं, जितना श्रेय दसवा हथौड़े का रहा पत्थर को तोड़ने में, उतना ही सहयोग वो पहले वाले का, दूसरे वाले का, तीसरे वाले का भी रहा। क्योंकि ये पहले हथौड़े ने, दूसरे ने, तीसरे ने, चौथे ने, इन्होंने उस पत्थर को अंदर ही अंदर कमजोर किया था, इतना कमजोर कर दिया था कि दसवें हथौड़े से टूट गया। तो इसलिए फल हमें बाद में मिलेगा, लेकिन हमारा वो जमा हो रहा है। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखो, बाबा ने तो एक बहुत अच्छी हमें कर्मों की गति बताई है कि बच्चे आपके कई जन्मों के हिसाब किताब सामने आते हैं और आएंगे ही, कई जन्मों के हिसाब किताब, वो सारे इसी जन्म में आएंगे। एक जन्म मिला है इतने जन्मों का हिसाब किताब चुकाने का, 63 जन्मों के कर्मों का हिसाब किताब मुझे सिर्फ एक ही जन्म, एक ही इस जीवन में चुकाना है। तो बड़े बड़े रूप में तो आएंगे ही परीक्षाएं, पेपर, ये सारे हिसाब किताब, लेकिन आप अच्छे से अच्छा करते रहो, कोई भी कर्म श्रीमत के विरुद्ध नहीं करो। किसी भी बात में सफलता नहीं मिल रही है, लाभ नहीं मिल रहा है, तो भी अपने आप के अंदर निराशा नहीं आने दो, आशावादी रहो, मेरा किया हुआ जमा हो रहा है क्योंकि मैंने अच्छा किया है, अच्छा किया है, आत्मविश्वास होना चाहिए, अच्छे से अच्छा किया है। ये कर्मों की गति का ज्ञान जब अच्छी तरह से हमें होता है, तो जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाती है, कैसा भी कड़े से कड़ा हिसाब किताब हमारे सामने आता है, हम उसमें दुखी परेशान नहीं होते, किसी को दोष नहीं देते हैं, न किसी इंसान को दोष, न भगवान को दोष, किसी को हम दोष नहीं दे सकते, हमारे कर्मों का ही दोष है ये, वो दोष हमें ही मिटाना है क्योंकि कर्म हमने ही किया। इसके साथ हमें तीव्र पुरुषार्थ में जानकी दादी की मुझे एक बात बहुत याद आती है, उनकी क्लास मैंने सुनी थी, वो लाइन मुझे इतनी अच्छी लगी, वो लाइन मैं कभी भूलती नहीं हूं कि हमें हमारे जो सद्गुण है, जिसको हम वैल्यूज भी कहते हैं, अपने सद्गुणों को हमेशा कस के पकड़ के रखो। ये शब्द हैं जानकी दादी के। हमेशा किसी भी परिस्थिति में, कैसी भी परिस्थिति में, कैसा भी समय हो, कैसी भी बात हो, लेकिन सद्गुणों को हमेशा कस के पकड़ के रखो, कहीं वो छूट ना जाए। इसने मेरे साथ इतना बुरा किया तो मैं भी करूं ना? नहीं, ये नहीं। जो करेगा सो पाएगा। मुझे तो अच्छे से अच्छा करना है, मुझे अपने स्वमान में रहना है, मुझे हमेशा श्रेष्ठ कर्म ही करते रहना है। परिस्थिति मुझसे विकर्म करवा दे, परिस्थिति मुझे निराश कर दे, दुखी कर दे, नहीं। मुझे श्रेष्ठ कर्म ही करने हैं, सद्गुण सदैव सबके साथ व्यवहार करते हुए सद्गुणों को बना के रख रहा है। कोई आपके साथ कैसा भी व्यवहार कर रहा है, लेकिन आपका बाबा ने हमको क्या शिक्षा दी है, आप उसके साथ बहुत अच्छा करो। कोई गाली भी दे रहा है, बाबा की मुरली में आता है ना, तो भी आप उसको फूल चढ़ाओ। ऐसे ऐसी बाबा की शिक्षाएं हमें मुरली में मिलती ही रहती है। प्रश्न यहाँ है कि बाबा की इतनी श्रेष्ठ, इतनी ऊंची शिक्षाओं को हम कहाँ तक पूर्ण रूप से जीवन में फॉलो करते हुए चलते हैं, ये प्रश्न चिन्ह लग जाता है यहाँ पर। इससे संबंधित मुझे बहुत अच्छा प्रसंग याद आता है, आप लोगों ने भी सुना ही होगा, वो सभी नहीं, बाबा भारती का। बाबा भारती के पास बहुत सुंदर घोड़ा था, बहुत सुंदर, बहुत हर्षपुष्ट। उस समय का जो डाकू खडक सिंह था, उसकी नजर उसके घोड़े पर थी, कैसे भी करके मैं ये घोड़ा हासिल कर लूं। अब किस तरीके से करूं? हमेशा बाबा भारती घोड़े के साथ ही रहते हैं। उसने एक युक्ति रची, डाकू ने, खडक सिंह ने एक युक्ति रची कि जहां से रोज घोड़े पर बैठकर बाबा भारती निकलते हैं, उस रास्ते पर रोड के किनारे वो एक अपाहिज का वेश धारण करके वो डाकू बैठ गया, जैसे अपाहिज हूं मैं ऐसा वेश बना के। बाबा भारती तो बड़े दयालु थे, जैसे उसके सामने उनका घोड़ा आया, उसने हाथ देके रोका, बाबा भारती रुक गए। उस डाकू, जो अपाहिज बना हुआ डाकू था खडक सिंह, उसने कहा मुझे आप थोड़ी दूर छोड़ दीजिए, मैं चल नहीं सकता हूं। दयालु बाबा भारती खुद उतर गए और उसको घोड़े पर बिठा दिया और उसकी लगाम पकड़ के चलने लगे, पैदल चलने लगे। कुछ कदम ही चले थे कि डाकू ने जोर से झटका देके लगाम उनके हाथ से छुड़वा के वो घोड़े को थोड़ा सा स्पीड से दौड़ाना शुरू किया। तुरंत बाबा भारती समझ गए कि ये तो डाकू खडक सिंह है और ये मेरा घोड़ा लेकर जा रहा है। उन्होंने आवाज लगा के कहा, खडक सिंह तुम बेशक मेरा घोड़ा ले जाओ, पर जाते जाते मेरी एक बात सुनते हुए जाओ। उसने स्पीड कम की, घोड़े की चाल कम करी और पूछा, आप क्या कहना चाहते हो? बोले, बस मैं यही कहना चाहता हूं, ये आज की ये जो घटना है, इस घटना का वर्णन तुम किसी के साथ करना नहीं, किसी के पास करना मत, कभी मत करना, वरना लोग अपाहिजों के ऊपर से विश्वास करना छोड़ देंगे। बस इतना ही कहना है। और वो घोड़ा लेके चला गया। बाबा भारती लौट के अपनी कुटिया में आ गए। अब देखो, बाबा भारती को, वो तो संत थे, कहीं अटैचमेंट नहीं था, किसी चीज से लगाव नहीं था, घोड़े में आए, शांति से अपने निश्चिंत स्थिति में सो गए, निश्चिंत से बड़े अच्छी नींद में सो गए। वहां घोड़ा लेके जो गया था डाकू, उसको रात भर नींद नहीं आई, रात भर उसके कानों में वही शब्द गूंजते रहे, तुम मेरा घोड़ा बेशक लेकर जाओ, पर इस घटना का वर्णन तो किसी से करना मत, वरना लोग अपाहिजों के ऊपर से विश्वास करना छोड़ देंगे। गूंज तरह ये शब्द उसके कानों में गूंजते रहे और रात भर वो बेचैन रहा, चैन के नींद नहीं सो सका। अब एक और देखो, इतनी प्रिय चीज पाकर के वो चैन के नींद नहीं सो पा रहा है, और उधर अपनी इतनी प्रिय चीज को छोड़ करके भी, इतनी प्रिय चीज का त्याग करके भी वो बाबा भारती चैन की नींद सो रहे हैं। इसको कहते हैं वस्तु भी सुरक्षित, फिर डाकू फिर वापिस सुबह 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 अंधेरे में ही 4-5 बजे के समय घोड़े को ले आया, वापिस उनके अस्तबल में बांध के चला गया, क्योंकि उसको बेचैनी रही ना कि ये मैंने क्या किया, बहुत बड़ी गलती की है। वो घोड़ा वापिस लाके उनके अस्तबल में बांध के चला गया। तो देखो इसको कहते हैं मूल्य भी सुरक्षित और चीज भी सुरक्षित। चीज भी सुरक्षित उसकी रही, मिल गई उसको वापिस, और उसके मूल्य भी, उसको गुस्सा भी नहीं आया, नाराज भी नहीं हुआ, उसकी शिकायत भी नहीं की, पुलिस थाने में भी उसकी शिकायत रिपोर्ट नहीं लिखाई, कुछ भी नहीं किया, वो शांति से आए। तो वास्तव में दादी हमेशा यही कहती है, जीवन में कितना भी बड़ा नुकसान हो जाए, कितनी भी बड़ी प्रिय चीज छूट जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, हमेशा अपने सद्गुणों को पकड़ के रखो, कसके पकड़ के रखो। कसके पकड़ के रखना माने कभी छूट न जाए, कैसी भी परिस्थिति हो, कुछ भी बात हो जाए, कितना भी आपका अपमान हो जाए, कितना भी नुकसान हो जाए, लेकिन सदैव मूल्यों को पकड़ करके ही रखो। तो यदि इस बात को भी हम अपने जीवन में धारण करके रखते हैं, सद्गुणों से ही तुम देवता बनेंगे, जो देवता बनना हमारा लक्ष्य है ये ब्राह्मण जीवन का, तो देवता बनाने वाली बातें तो हमारी ये देवता ही गुण है ना, देवता ही गुण है तो मनुष्य से देवता बनाएंगे। इसलिए ये देवता ही गुण, ये सद्गुण या मूल्य कभी हमारे जीवन में छूटे नहीं, हमसे दूर न हो जाए। इसके बाद छोटे छोटे जो पुण्य कर्म होते हैं, छोटे छोटे पुण्य कर्म, अगर हम छोटे छोटे पुण्य कर्मों पर भी अटेंशन देंगे, ध्यान देंगे, करते रहेंगे, तो छोटे छोटे पुण्य भी इकट्ठे होते बड़ा पुण्य का खाता बन जाएगा। इसी प्रकार से छोटी गलती को भी हम इग्नोर ना करें, कोई छोटी भूल हो जाती है, कोई छोटी सी गलती हो जाती है, उससे भी हम उसको इग्नोर नहीं करें। छोटी सी तो बात है, अरे मैंने इतनी छोटी सी बात तो की है, छोटी सी बात को उसने इतनी बात मुझे सुना दी, मैंने जरा सी तो गलती की, उस गलती के लिए मुझे इतनी सिक्के सुना दिए, इतनी बातें कही, क्या क्या मुझे नहीं बोला छोटी सी गलती के लिए। नहीं, हम छोटी सी गलती को छोटा नहीं समझे, ये छोटी छोटी गलतियां ही इकट्ठी होकर हमसे बड़ी गलती करा लेती है, बड़ा अपराध करा लेती है। नहीं, छोटे को हम छोटा क्यों समझे। अब चींटी कितनी छोटी होती है, वो हाथी की मौत का कारण बन जाती है। भाई चिड़िया कितनी छोटी होती है, इतने बड़े एरोप्लेन के एक्सीडेंट की वजह बन जाती है। अब छोटा सा छेद होता है जहाज में, पूरी जहाज को डुबो देता है। आज वायरस कितना छोटा सा होता है, वो छोटा सा वायरस इंफेक्शन बना देता है। आपने कोरोना के समय तो देखा ना, कोरोना के समय वो छोटा सा वायरस ने कितनी तबाही मचा दी, पूरे विश्व के अंदर तबाही मचा दी, जो आंखों से दिखता भी नहीं था। हम छोटी गलती को, छोटी भूल को कभी छोटी समझ करके अलबेले ना हो जाएं कि छोटी सी ही तो भूल है, छोटी सी तो गलती करी हमने, छोटा सा ही तो पाप कर्म किया है, बड़ा थोड़ी किया है। ये छोटे 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 ही फिर आपसे बहुत बड़ा भी करवा देके। कहानी सुनिए ना, बच्चे ने पहले 1 रुपया चुराया, चोरी करते आदत पड़ गई, चोरी करते करते आज कितना बड़ा चोर डाकू बन गया कि फांसी के तख्ते पर उसको ले जाया गया। तो वहां शुरुआत तो उसने वहीं से की थी ना, छोटी सी चोरी से। हम अपने इस ब्राह्मण जीवन में, पुरुषार्थी जीवन में, जो हमारा लक्ष्य है संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करना और वो अंतिम समय की अपनी अच्छी तरह से तैयारी करना, तो उस तैयारी में ये चीज को भी हम इंक्लूड करें, इसको भी करें। आगे की बात, तीव्र पुरुषार्थ करने में, अंतिम समय की तैयारी करने में, आगे बढ़ने के लिए स्पीड को, पुरुषार्थ की स्पीड को तेज करने बाबा ने हमको कितना अच्छा हाईवे दिया है, कितना सहज मार्ग दिया है, सहज राजयोग, सहज ज्ञान, बस बाबा की श्रीमत पे चलते रहना है, बस इतना अच्छा हमको हाईवे दिया है। फिर भी हाईवे को छोड़ के हम ये छोटी छोटी गलियों में क्यों फंस जाते हैं, हम गलियों में क्यों चले जाते हैं? एक सर्वशक्तिमान, सारी दुनिया की सबसे बड़ी अथॉरिटी मेरा सर्व संबंधी है, मेरा साथी है, हर परिस्थिति में मेरा मददगार है, उसको छोड़कर जंत्र तंत्र मंत्र पता नहीं क्या ताबीज में धागों में पता नहीं किसके साथ विश्वास करना शुरू कर देते हैं, उसको छोड़कर रिद्धि सिद्धि की तरह चले जाते हैं। जो कहता है कि अरे आपके बाबा ने तो चमत्कार नहीं दिखाए, हम आपको चमत्कार दिखाते हैं, वो चमत्कार आपको मनुष्य से देवता नहीं बनाएगा, वो चमत्कार आपके विकारों को नहीं छुड़ाएगा, आपके वो अंतिम समय की तैयारी नहीं कराएगा। इसलिए बाबा ने इतना सुंदर हमें रास्ता दिया है, हमें सीधे इस रास्ते पर ही चलना है, इधर उधर की गलियों में भटकना नहीं। भटकाने की कोशिश बहुत करते हैं, आते भी हैं, नहीं कोई बीमार हो जाता है, देखो भाई आपका बाबा तो ठीक कर नहीं रहा है, हम लेते क्या बहुत अच्छा ताबीज देगा उससे आपका बच्चा ठीक हो जाएगा, कई ऐसे आते हैं। लेकिन हमारा निश्चय पक्का होना चाहिए, हमारा निश्चय 100% पक्का होना चाहिए। मालूम है एक माता का बच्चा बहुत बीमार हो गया था, बहुत अच्छी माता थी, बहुत ज्ञानी योगी माता थी, डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए थे, एमसी का डॉक्टर, बड़े बड़े दिल्ली के डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए, हम इसकी बीमारी इतनी विचित्र है, हम उसको ठीक नहीं कर सकते हैं। अब सारे रिश्तेदार आके उस माता को कहे ये करो वो करो, हम तुमको वहां ले चलते हैं, हम वहां ले चलते हैं, वहां वो बहुत ऐसा वो भभूति देंगे, वो वहां पर ऐसा ताबीज देंगे, वहां ऐसा मंत्र वाला धागा देंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, हमारे यहाँ के भी सब ठीक हो गए। अब चलो देखो तुमने है ना व्रत करना छोड़ दिया, तुमने उपवास करना छोड़ दिया, तुमने भक्ति करना छोड़ दिया, ये सब छोड़ा ना, इसे तुम्हारा बच्चा इतना बीमार हो गया। अब उस माता को सारे लोग बहकाने के लिए आ रहे हैं, सब उसको बहका रहे, बेचारी माता चारों तरफ से उससे परेशान, विधवा माता थी वो। उसने फोन किया बहन जी को कि बहन जी ऐसे ऐसे सब रिश्तेदार मुझे इतना ज्यादा मेरे पर प्रेशर डाल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। बहन जी ने उसको कहा ये बताओ माता तुमको बाबा में विश्वास है कि नहीं? बाबा जो सर्वशक्तिमान है सारी दुनिया से उससे बड़ी शक्ति है ही नहीं दुनिया में कहीं, है विश्वास उसके ऊपर? बोला हाँ। बोले पक्का है? बोले 100% है। तो फिर तुम उनकी बातों को क्यों सुनती हो? बाबा को याद करो, बस बाबा को याद करो, जो कुछ दिल की बात करनी है ना एक बाबा के साथ करो, और रियल में वो किसी की बात में नहीं आई, मेरा एक बाबा, बाबा को ही याद करती रही, बाबा को सब कुछ सुनाती रही, बाबा से ही मदद मांगती रही, और सचमुच चमत्कार ये हुआ कि धीरे 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 बच्चा ठीक होने लगा। ये प्रैक्टिकल घटना बता रही हूँ, और इतना बिल्कुल ठीक हो पहले जैसा ही हो गया वो, सारे डॉक्टर आश्चर्य ये क्या हुआ, हमने हाथ खड़े कर दिया, हमारे पास उस बीमारी का इलाज नहीं, और हमने तो उनको कह दिया जितने दिन का मेहमान है उसको रखो आप, इसका कोई इलाज नहीं, और आज बिल्कुल एकदम पहले जैसा हर्षपुष्ट हो गया है। तो ये हमारे बाबा पे विश्वास का चमत्कार, तो ये बाबा पे विश्वास रखना, एक बाबा की श्रीमत पर चलना, ये हाईवे पे चलो आप, तो आपका पुरुषार्थ बहुत तेज हो जाएगा। हाईवे पे स्पीड तो तेज हो जाती है ना सभी की, है ना, वाहन की स्पीड। ये गलियों में घुसेंगे तो भटकेंगे, इधर उधर ऐसे चक्कर लगाते रहेंगे, भटक जाएंगे वहां। इसलिए तीव्र पुरुषार्थ के लिए, जो हमें अंतिम समय के लिए पुरुषार्थ को तेज करना है, परिवर्तन करना है उसके लिए बाबा ने जो हाईवे दिया है हमें उस हाईवे पर ही चलते रहना है। एक बात और, हम कभी कभी पुरुषार्थ करते हैं, पुरुषार्थ अच्छा चलता रहता है, हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है पीछे भी आ जाते हैं। बुद्धि में लक्ष्य है, हमें आगे बढ़ना है, फरिश्ता बनना है, संपूर्ण बनना है, कर्मातीत बनना है, अपनी मंजिल को पाना है, संपूर्ण स्थिति अंतिम समय की तैयारी करनी है, अंदर में लक्ष्य है, याद है। तो देखो आगे बढ़ने के जब हम आगे कदम उठाते तो पीछे का कदम उठ जाता है ना, छूट जाता है ना, जमीन को छोड़ देता है ना। पीछे के कदम को जमीन छोड़ेगी तो वो आगे बढ़ेगा, फिर वो कदम को छोड़ेंगे हम तो जमीन के चिपका हुआ कदम है उसको उठाएंगे तो वो आगे बढ़ेंगे। तो हम पीछे वाले को छोड़ते जाएंगे तब हम आगे आगे बढ़ेंगे। कई है ना भूतकाल को, भूतकाल की बातों को पकड़ के रखते हैं, छोड़ते नहीं है, पिछला छोड़ते नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे। भूतकाल को पकड़ के रखा है, पिछला पकड़ के रखा है, जकड़ा हुआ है। अब किसी व्यक्ति को पीछे से किसी ने ऐसे पकड़ के रखा हुआ है, किसी व्यक्ति वो बेचारा आगे कैसे जाएगा, वो पीछे से किसी ने पकड़ के रखा है उसको। ऐसी कोई भूतकाल की बातें, भूतकाल की घटनाएं, भूतकाल की गलतियां भूल जो भी बातें हों, अगर वो हमें याद आती रहती है, बीच बीच में याद आती रहती है, तो वो भी हमारे तीव्र पुरुषार्थ में बहुत बड़ी बाधा है, रुकावट है, हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे, आगे नहीं जा सकेंगे, पुरुषार्थ को तेज नहीं कर सकेंगे। इसलिए बीती बातों का चिंतन नहीं करना है, बीती बातों को बिंदु लगाना, कहने में तो बाबा के छोटा सा वाक्य है, बीती को बिंदु लगाओ कितना छोटा सा वाक्य है, इसकी गहराई कितनी है, बहुत गहराई है। भूतकाल को, दोनों ही भूत खतरनाक है, एक को भूत कहते हैं ना एविल सोल, और ये जो भूत भूतकाल की बातों को पकड़ के रखना, याद करना, ये कहने जब वो कांटे हमारे जीवन की यात्रा में हमें सब मिलता है, कड़वा भी मिलेगा, मीठा भी मिलेगा, लाभ भी मिलेगा, हानि भी मिलेगी, दुख भी मिलेगा, सुख भी मिलेगा, कांटे भी मिलेंगे, फूल भी मिलेंगे, जीवन की यात्रा में सब मिलेंगे। अब कांटों को याद करेंगे तो जब चुभे थे तब भी दर्द हुआ था, आज याद करने पर भी वही दर्द हो रहा है, तो फिर क्यों कांटों को याद करते हैं। जो आज भी दर्द दे रहा है, जब चुभा था तभी भी दर्द दिया था, आज याद करने पर भी दर्द हो रहा है, तो उसे तो पिंड छुड़ा लेना चाहिए ना दुख देने वाली बातों से। ये बीती की बात, बीती बातों का चिंतन नहीं करना है। बाबा इतनी सुखदायी बातें हमें रोज सुनाते हैं, इतनी सुंदर सुंदर हमें ज्ञान मोती रोज मिलते हैं, उनको याद करो, उन फूलों को याद करो, ज्ञान के फूलों को याद करो, तो कितना मन को सुकून और सुख मिलता है। मुरली को देखो, रिवाइज करो, कितना आनंद आता है। जिस दिन मुरली को आप बार बार पढ़ते रहेंगे उतना आनंदित होते जाएंगे। कांटों को याद नहीं करना, बीती बातों को याद नहीं करना। कहते हैं ना भूतकाल क्या है, भूतकाल ये मृत है, मर चुका है, वर्तमान जिंदा है, और जो भविष्य है वो अजन्मा, उसका जन्म नहीं हुआ है। तो जो जिंदा है उसको याद करना, उसमें रहो ना, वर्तमान जिंदा है, भूत को मृत है, मरे हुए को याद क्यों करते, जो बीत चुका माने बीत चुका, तो गड़े मुर्दे को क्यों निकालते हो। इसी भूतकाल की बातें भी हमारे तीव्र पुरुषार्थ में रुकावट, कभी कभी बातचीत में है ना, इतने दिन पहले आपने ऐसा बोला था, इतने साल पहले ऐसी बात हुई थी, मैं कोई भूली थोड़ी हूं अभी तक, सब मुझे याद है आपका। अब वो याद करने में आपको क्या मिल रहा है, सुख मिल रहा है क्या। कि कोई भी प्रकार की बीती घटनाएं हो, बीती भूले हो, अपराध हो, कोई भी बात किसी से कहा सुनी हो गई हो, लड़ाई झगड़ा हो गया हो, कभी भी उन बातों को याद नहीं करना है, वर्तमान में जीना है, क्योंकि वर्तमान जीवित है ना। इस बात का भी हमें तीव्र पुरुषार्थ के लिए ध्यान रखना है और आगे ही बढ़ना है। इसके साथ साथ नष्टो मोह स्मृति लब्धा हमारी आध्यात्मिक जीवन का अंतिम पुरुषार्थ है, अंतिम लक्ष्य है। बाबा कहते हैं नष्टो मोह स्मृति लब्धा से गीता पूरी हो गई। जब अर्जुन के मुख से निकला नष्टो मोह स्मृति लब्धा, ये मैं बन गया हूँ, बस उसके बाद सुनाना नहीं पड़ा कुछ भी, गीता का ज्ञान फिर नहीं सुनाना पड़ा। तो संगम युगी हमारे इस आध्यात्मिक पुरुषार्थ का अंतिम लक्ष्य ही है नष्टो मोह स्मृति लब्धा। देखना है अभी तक भी मेरी अंदर की रग, मन बुद्धि की रग कहाँ कहाँ जुड़ी हुई है। अभी तक भी मोही तो कहेंगे ना उसको, उन सब से अपने आप को छुड़ाना, अपने को छुड़ाना, नष्टो मोहा बनना। बाबा कहते हैं ये आत्मनिरीक्षण करने की बात है, स्वयं स्वयं को ही देखो कि कहाँ कहाँ मेरा अटैचमेंट है। भाई मैं और मेरे वाली बात आ गई, कहाँ मैं हम फंसे, कहाँ मेरे में फंसे हुए हैं। अंत में देखो कुछ भी काम नहीं आएगा, अकेले आए हैं, अकेले जाना है, कुछ भी साथ लेकर नहीं जाना है, सब छूटना है, ऐसे जाना है। कुछ साथ में जाएगा जिसके लिए हम इतना सब कुछ करते हैं, कभी कभी उन बातों के लिए झूठ भी बोलते हैं, कुछ पाप कर्म भी कर लेते हैं, अपराध भी कर लेते हैं, सब यही छूट जाना है। अगर ये सिद्धांत भी याद रहा कि हमें कुछ साथ लेकर नहीं जाना है, अकेले आए अकेले जाना है, आप देखिए आपका पुरुषार्थ कितना अच्छा होता है, आप कितने जल्दी फरिश्ता बन जाते हैं। छोटी सी कहानी सुना देती हूँ, मैं भी कुछ समय बचा है इसलिए। एक राजा शिकार करने जा रहे थे, अपने कुछ साथियों को लेकर, सिपाहियों को लेकर, शिकार के शौकीन थे वो। रानी ने जिद करी कि मुझे भी आपके साथ चलना है। बोले तुम जाके क्या, हम तो जंगल में रहेंगे, जंगल में डेरा डालेंगे, तुम वहां जाके क्या करोगी। लेकिन जिद पे नहीं, मुझे भी शिकार देखना है, शिकार कैसे करते हैं, और मुझे भी जाना ही, जिद बिल्कुल। आखिर राजा को उसे ले जाना पड़ा, रानी भी गई वहां जंगल में, उन्होंने डेरा जहां डाला वहां पर। थोड़ी देर के बाद में उसने एक हिरण को देखा, हिरण को ऐसे दौड़ते देखा कहीं, राजा को कहा देखो वो हिरण है ना, उसका शिकार करो, उसका शिकार करो। बोले हम बड़ा बड़ा शिकार करेंगे। बोले नहीं, उसका शिकार करो आप। राजा, रानी जिद कर ली, ठीक है। तीर चलाया राजा ने, हिरण को तीर लगा, तीर लगने पर भी हिरण दौड़ता रहा, दौड़ता रहा, दौड़ता रहा, दौड़ता रहा, दौड़ते दौड़ते जाकर वो फिर, और राजा भी पीछे पीछे दौड़ता रहा उसको, ये कहीं तो गिरेगा ही ये शिकार, तो शिकार मेरे मुझे मिल जाए। राजा भी पीछे पीछे दौड़ता रहा, दौड़ते 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 हिरण ने देखा कि राजा काफी थोड़ा पास में आ गया है, तो वो एक बहुत घनी झाड़ियों के अंदर छिप गया जहां दिखाई नहीं दे। राजा भी वो ठीक वहीं पे पहुंच गया, उसके आगे फिर नहीं गया, बोले हिरण यहीं कहीं है आसपास। हिरण बाहर आया और उसने कहा राजा मैं तो यहां छिप गया था, बहुत तेज दौड़ता रहा था, पर तुम यहां मेरे तक पहुंचे कैसे, मैं तो बहुत आगे निकल गया था आपसे, तो यहां तक तुम कैसे पहुंचे। तब राजा ने कहा ये जो तुम्हारे जो खून के धब्बे थे ना, जो खून टपकता रहा था पूरे रास्ते, वो खून के को देखते 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 मैं यहां तक पहुंचा। तब हिरण ने कहा कि आप कुछ समझे, आपको कुछ शिक्षा मिली। राजा ने कहा क्या शिक्षा। बोले देखो राजा, जब मेरा खून मेरा अपना नहीं बना, मेरी मौत का कारण बना, तो रानी आप किसके साथ देगी, वो कब साथी बनेगी, वो तो आपके रिश्तेदार है ना। फिर भी मेरा अपना खून ही मेरी मौत का कारण बन गया, इसलिए यहाँ दुनिया में कोई अपना नहीं है, कोई अपना नहीं है, सब स्वार्थ के साथी हैं। इसलिए हमें हमेशा यही समझ के चलना है और नष्ट मोह अपने आप को बनाना है कि कुछ भी मेरे साथ ना कोई संबंधी जाएगा और ऊपर जो मुझे सजा मिलेगी उसमें भी साथी कोई बनने वाला नहीं है। जिसके लिए आपने सब कुछ किया होगा वो भी कोई साथी नहीं बनेंगे, कोई आपकी सजा के गवाह नहीं बनेंगे। किसकी सजा माफ कर दो उसके गवाह नहीं बनेंगे। इसलिए जो कुछ भी मुझे करना है अपनी अवस्था को श्रेष्ठ उपराम बनाने के लिए, है ना, कि सबसे नष्टो मोहा बनकर, सबसे उपराम बनकर एक निराकार राम की स्मृति में खो जाना, इसी को ही कहते हैं नष्टो मोहा बन जाना। एक निराकार राम, सबसे उपराम हो जाओ, एक निराकार राम में खो जाओ, उसकी याद में खो जाओ, लवलीन हो जाओ, सबसे अटैचमेंट हटाकर, मोह हटाकर, नष्टो मोहा बनकर, यही हमारी अंतिम समय की तैयारी है। ये जो सारी बातें मैंने पॉइंट आपको सुनाई, ये सारी पॉइंट, कम से कम 8-10 पॉइंट है ये, इन सब बातों को यदि हम हमेशा कर्म करते हुए, पुरुषार्थ करते हुए ध्यान पर रखेंगे तो निश्चित रूप से आप वो अंतिम समय की तैयारी कर लेंगे, अर्थात उपराम बन जाएंगे, फरिश्ता बन जाएंगे, कर्मातीत बन जाएंगे, संपूर्ण बन जाएंगे। यही हमें तैयारी का इशारा बाबा से मिलता रहता है। ओम शांति। साढ़े बारह तक अब योग चलेगा, सबको 12:30 तक योग में बैठना है।
युग में अब तुम्हें आ